तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ इंशाल्लाह ताला, मक्का की गलियों में। हमने लास्ट ईयर इसके सेशंस किए थे, आप लोगों को पसंद आया था, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है
हमारी सीरीज। चलो मक्का की गलियों में चलकर देखें। ये सीरत इंसाइक्लोपीडिया से माखूज है, इसमें तमाम वाकयात उसी से लिए गए। मैंने पूरे साल में अपने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा, जब से खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात हुई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे, वो मुस्कुराना ही भूल गए। एक साल गुजर चुका मगर मक्का के हालात बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बेकस मुसलमानों के हालात पहले भी कुछ अच्छे ना थे, मगर अब तो यूं महसूस होता है मुशरिकीन को खुला हाथ मिल चुका है। वो अपनी मनमानियां करने लगे हैं और अंधेर नगरी ऐसी है कि जिसका जो जी चाहता है जुल्म ढाता है। यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स अपील नहीं हो सकती, यहाँ कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं। मुसलमान मुसलसल जुल्म सहते जा रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी, अंधेरा हर चीज पर छा रहा था। दूर मुझे कुछ साए चलते नजर आने लगे, नहीं फर कमजोर से। कोई मुसलमान एक गधे पर कुछ सामान बांध के जा रहे थे। वो छुपते छुपाते ऐसे जा रहे थे गोया किसी दुश्मन से आंख बचा के निकलना चाह रहे हैं। मैं करीब गई तो कानों में कुरान की तिलावत की आवाज पड़ी। मैं समझ गई ये वो मुसलमान है जो इस बस्ती में जुल्मों सितम से तंग आकर अब यहां से कहीं और हिजरत कर रहे हैं, मगर जालिम इनको निकलने भी तो नहीं देते, इसीलिए ये छुपते छुपाते जाते हैं। रात के अंधेरे में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, काम कारोबार छोड़ दिया, सिर्फ एक कलमाए हक की खातिर। कितनी बड़ी कुर्बानी है। मैं समझती थी कि शायद हमारे जमाने में 21वीं सदी में ही जुल्म सितम होता है और मुसलमान रेफ्यूजीज बनते हैं, मगर आज पता चला कि ये तारीख तो 1400 साल से चली आ रही है। मैं समझती थी सिर्फ फलस्तीनियों पर जुल्म होता है, और ये नई बात है। हालांकि अब पता चला कि ईमान वाले तो हर जमाने में ही सताए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हमेशा जालिमों के जुल्म का निशाना बनते रहे। ना जाने ये लोग इतने से सामान से कैसे गुजारा करेंगे। गधे पर बस एक गठरी रखी हुई है जो इनकी कुल मता है। आने वाले दिनों में कैसे जिंदगी कटेगी? मेरे जहन में हजारों खदशात आ रहे थे। कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, जॉब का क्या करेंगे? इनके तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं, कोई एटीएम नहीं, अपने कबीले के अलावा कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं। अकेले बंदे को तो चाहे कोई पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दे, या लूट ले, या कत्ल कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। फिर ये इतना बड़ा रिस्क लेकर कैसे चल दिए? सिर्फ अल्लाह के कलमे को सीने से लगा के इन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क ले लिया। हर चीज को दांव पे लगा दिया। मैंने कुछ देर के लिए अपने गिरेबान में झांका। मैं इस जगह होती तो क्या करती? क्या मेरा ईमान इतना मजबूत था कि मैं ऐसा स्टेप उठा सकती? मेरे अंदर सिवाय निदामत के कुछ नहीं था। मैं जानती थी कि मैं अपना लाइफ स्टाइल शायद कभी भी गिव अप ना कर सकती। मैं शायद यूं सिक्योरिटी रिस्क मोल लेकर हिजरत ना कर पाती। मेरी लग्जरीज मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाती। मेरी जॉब, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरे दोस्त अहबाब, वो जंजीरें थीं जो मुझे ये कदम उठाने में कभी भी आमादा ना होने देती। ये फकीर नजर आने वाले मुझे कितने अमीर नजर आने लगे। इनके पास ईमान की कीमती तरीन दौलत है, और मेरे पास दुनिया की तमाम आसाइशें होने के बावजूद कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे पास ऐसे मजबूत ईमान की दौलत नहीं, मैं इससे महरूम है। मैं ऐसी सोच में थी कि मुझे खौला बिनते हकीम नजर आई, जो उस्मान बिन मजून की जोजा है। ये तेजी से मक्का की गलियों में चल रही थी। यूं लगता था कि किसी खास मिशन पे निकली हुई है। मैंने देखा वो प्यारे नबी के घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उनके पीछे हो ली। दरवाजे पे पहुंच के उन्होंने सलाम दुआ की और अंदर आने की इजाजत ली। मेरे नबी की आवाज अंदर से सुनाई दी, सलाम का जवाब दिया और अंदर आने की इजाजत इनायत फरमाई। ये क्या बात थी कि मैं जब भी अपने नबी की आवाज सुनती थी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मेरे महबूब, मेरे नबी, उनकी आवाज भी मुझे प्यारी थी। मैं तो तसव्वुर किया करती थी कि कयामत के दिन इनके हौस पे इनसे मुलाकात करूंगी, इनका दीदार करूंगी, इनकी आवाज सुनूंगी। मेरे तो नसीब खुल गए कि मैं इनको देख रही हूं, इनको सुन पा रही हूं। खौला आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्यारे नबी से कुछ कह रही थी। मैंने कान लगाया। वो बोली, या रसूल अल्लाह, क्या आप शादी नहीं करेंगे? मेरे नबी ने जवाब दिया, कौन है? वो बोली, आप चाहें तो कवारी से कर लें, चाहे तो बेबा से। पूछा, कमारी कौन है? वो झट से बोली, अल्लाह की मखलूक में वो जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है, अबू बकर सिद्दीक, उनकी बेटी आयशा। फिर मेरे नबी ने पूछा, और बेवा कौन है? बोली, सौदा बिनते जमा, वो आप पर ईमान लाई और आपके हुक्म की इत्तेबा भी की। मेरे नबी ने फरमाया, तुम जाओ और उन दोनों को मुझसे निकाह का पैगाम दे दो। कौला बिनत हकीम खुशी खुशी उठी और तेज तेज चलते हुए अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ रवाना हो गई। मैं भी पीछे पीछे दौड़ी, देखती हूँ अब क्या होता है। वहां पहुंची तो उम्मे रुमान सामने ही बैठी थी। वो जज्बात पे काबू ना रखते हुए जाते ही बोली, ए उम्मे रुमान, क्या ही खूब अल्लाह ताला ने तुम पर खैर और बरकत नाजिल फरमा दी। उम्मे रुमान हैरत से बोली, वो क्या? मौला ने बड़े शौक से कहा, मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है, मैं आपके पास आयशा के निकाह का पैगाम लेकर आई हूँ। उम्मे रुमान को शायद इस बात की तवक्को ना थी, शशोपंज में पड़ गई और बोली, अबू बकर के आने का इंतजार करो। अभी ये दोनों बातें कर ही रही थी कि अबू बकर घर में दाखिल हुए। मौला झट से उनकी तरफ लपकी और सारी बात उनको सुना डाली। अबू बकर भी ऐसी बात की तवक्को नहीं रखते थे, कुछ हैरत से बोले, क्या आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब है? वो तो उनकी भतीजी है। ये जवाब सुन के खौला भी खामोश हो गई और उनको कोई जवाब बन ना पाया। फिर सोच में पड़ गई कि क्यों ना जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछ लूं। वो यहां से निकली और सीधी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गई। मैं भी उनके पीछे दौड़ी चली जा रही थी। कैसी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। वहां पहुंची तो उनको सारी बात बताई। मेरे नबी ने फरमाया, तुम उनकी तरफ जाओ और उनको बता दो कि मैं इस्लाम में आपका भाई हूं और आप मेरे भाई हैं, आपकी बेटी मेरे लिए मुनासिब है। कौला ये जवाब सुन के बड़ी खुश हुई और तेजी से अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंच गई। अबू बकर ने जब मेरे नबी का जवाब सुना तो फरमाया, अच्छा तुम इंतजार करो। मैं हैरान हुई कि ये क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए और कौन सा मिल सकता है इनको, फिर इंतजार किस बात का। मैंने देखा अबू बकर घर से बाहर निकल गए, मैं भी पीछे हो ली। देखा तो ये मुताम बिन आदी के घर पहुंच गए। उनके घर इजाजत ली, अंदर दाखिल हुए, सामने मुताम और उसकी बीवी बैठे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जाके उनसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ बात की, जिसके जवाब में मुताम की बीवी बड़े जोर से बोली, ए अबू कुहाफा के बेटे, अगर मैंने तुम्हारे यहाँ अपने बेटे की शादी की तो शायद तुम हमारे बेटे को भी साबी बना दोगे और अपने इस दीन में दाखिल कर लोगे जिसमें तुम खुद हो। अबू बकर सिद्दीक ने यह सुना तो मुताइम से मुखातिब होके फरमाया, जो बात इसने कही है क्या तुम भी वही कहते हो? वो बोला, हाँ मैं भी यही कहता हूँ। अब मैं समझ गई, मुतम ने अपने बेटे जुबैर के लिए आयशा के साथ निकाह का पैगाम दिया था और अबू बकर सिद्दीक पहले उनसे बात क्लियर करना चाहते थे ताकि ये ना हो कि वादा खिलाफी हो जाए। कितने वादे के पक्के थे, कितने बात को निभाने वाले थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए कैसे मामला खुद ही साफ कर दिया कि मुतम ने ही इनकार कर दिया। अब उनके चेहरे पर इत्मीनान था। वो घर की तरफ चल दिए और आते ही खौला से फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ले आओ। खौला खुशी से दौड़ती भी मेरे नबी को जाकर ये पैगाम देती है और मेरे प्यारे नबी एक दफा फिर दूल्हा बन गए। मगर ना यहाँ कोई ढोल बाजा था, ना आतिशबाजी थी, ना देगें पकी, ना कोई लंबी चौड़ी बारात आई। एक सादा सी तकरीब थी जिसमें आयशा को लाकर बिठा दिया गया। वो कोई 7-8 साल की बच्ची होंगी। इस तरह शव्वाल के बाबरकत महीने में ये निकाह हो गया। मैं सोच रही थी ये कितना आसान निकाह है, कितनी आसानी से बातचीत भी हो गई और निकाह भी अंजाम पा गया। मगर अभी आयशा की रुख्सती नहीं हुई। इस निकाह के चंद दिन बाद खौला दूसरे मिशन पे रवाना हो गई। अब वो सौदा के यहाँ तशरीफ ले गई। सौदा बेवा हो चुकी थी और अपनी इद्दत भी मुकम्मल कर चुकी थी। ये सहेली थी खौला की। खौला ने इनसे जाके कहा, अल्लाह ने तुम पर क्या खूब खैरो बरकत नाजिल की है। सौदा ने हैरत से पूछा, वो क्या? खाला ने कहा, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, मैं उनकी तरफ से निकाह का पैगाम लाई हूँ। ये सुनकर सौदा खुशी से बोली, मुझे ये कबूल है, तुम मेरे वालिद के पास जाओ और उनके सामने इस पैगाम का जिक्र करो। सौदा के वालिद बूढ़े हो चुके थे। खौला उनके पास पहुंच गई और आने का मकसद बयान किया तो वो बोले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम पल्ला हैं और मुआज्जज भी हैं, इस बारे में तुम्हारी सहेली क्या कहती है? खौला बोली, वो तो उनको पसंद करती हैं। बाप ने कहा, फिर मेरे पास उनको बुला लो। सौदा तशरीफ लाई तो बाप ने उनसे सवाल किया, क्या तुम पसंद करती हो कि मैं इनसे तुम्हारा निकाह कर दूं? उन्होंने सर झुका लिया और फरमाया, जी। इस तरह से वालिद ने, जो अभी काफिर ही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और आपकी शादी सौदा से करवा दी। मैंने देखा मेरे नबी ने एक बेवा से शादी की और वो भी बड़ी उम्र की, मगर इसके बावजूद 12 औकिया चांदी मेहर में अदा किया, जो 500 दिरहम बनते थे। सादी सी शादी और रुखसती भी हो गई। मेरे प्यारे नबी मेरी अम्मी सौदा को लेकर अपने घर तशरीफ ले आए। कुछ दिन ही गुजरे थे कि सौदा के भाई, जो हज पर गया हुआ था और अभी काफिर ही था, वापस लौट आया तो उसको पता चला कि मेरी बहन की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। तो रंजो गम से वो अपने सर में मट्टी डालने लगा, मगर उसको क्या पता कि उसकी बहन के तो नसीब खुल गए। बाद में जब ये मुसलमान होंगे तो इनको कितनी शर्मिंदगी होगी अपने इस अमल पर। मैंने देखा मेरे नबी का घर एक दफा फिर आबाद हो गया। अब काम सिमटने लगे हैं। सौदा समझदार खातून है, बच्चों की देखभाल करना, घर का ख्याल रखना सब बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी। वाकई औरत के बगैर तो घर बिखर कर रह जाता है। इस घराने को एक घर वाली की अशद जरूरत थी। घर तो बस गया, मगर मेरे नबी के घर से बाहर की परेशानियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो कुरैशी टस से मस हुए और ना ही उन्होंने अपने जुल्मों सितम ढाने में कोई कमी की, बल्कि पहले से भी ज्यादा सरगर्म हो गए। इन हालात में एक इंसान का मायूस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना बहुत मुमकिन होता है, मगर मैंने अपने नबी को कभी मायूस देखा ही नहीं। आप तो हमेशा पूर उम्मीद ही रहते, बल्कि दूसरों को भी हौसला देते। इतने खटन हालात में, जिनमें कहीं कोई बेहतरी की सूरत नहीं नजर आ रही थी, सिवाय इसके कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, काफरों की बात मान ली जाए, रास्ता बदल दिया जाए, तभी ये लोग खुश होंगे और बाज आएंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मगर मेरे नबी इस पे कभी राजी होने वाले नहीं थे। फिर हल क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने देखा मेरे नबी जैद बिन हारिसा के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे कानों में ताइफ का लफ्ज सुनाई दिया और प्यारे नबी बहुत पुर उम्मीद दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे, ताइफ वाले जरूर बात मान जाएंगे, वैसे भी उनके साथ रिश्तेदारी भी बनती है। मेरे नबी के परदादा हाशिम की वालदा का ताल्लुक भी इस इलाके से था, और हाँ, दाई हलीमा सादिया, उनके भी तो चचाजात बनू सकीफ थे। यूं लग रहा था शायद वाकई कुछ बात बन ही जाए और तारीख बदल जाए, आखिर रिश्तेदारी का कुछ तो पास करेंगे। वैसे भी अब मक्का में रहने के तो कुछ हालात नजर नहीं आ रहे थे, यहाँ तो हर चीज पहले से बदतर होती भी नजर आ रही थी। मगर मैं सीरत में जितना कुछ पढ़ चुकी थी, वो याद आने के बाद मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। इनको नहीं पता वहां पे क्या हालात हो सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरे नबी मुस्तकबिल के हालात को नहीं जानते, गैब की खबरों को नहीं जानते, वरना कभी वहां जाने का इरादा ना करते। वाकई गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये कितनी उम्मीद रखे मैं, मगर इनको नहीं पता ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सफर साबित होने वाला है। मैं बड़ी बेबसी से उनकी तैयारी देख रही थी। कल सुबह उन्होंने रवानगी का फैसला कर लिया था। प्यारे नबी और उनके लाडले जैद बिन हारिसा पूरा अजम थे, पूरी उम्मीद थे। शव्वाल के आखिरी दिन चल रहे थे। सुबह सवेरे का वक्त था जब मेरे नबी अपने आजाद करता गुलाम जैद के साथ अकेले ही ताइफ की तरफ निकल खड़े हुए हैं। दोनों पैदल चले जा रहे हैं। हालात किस कदर मुश्किल हो चुके हैं। मक्का में रहना दूभर है और आगे मालूम नहीं किस चीज का सामना करना पड़े, मगर इसके बावजूद मेरे नबी पूरी उम्मीद है, चेहरे पर इत्मीनान है। मैंने सोचा अगर मैं इनकी जगह होती तो शायद कब की हार मान चुकी होती, दिल छोड़ चुकी होती, हिम्मत खत्म कर चुकी होती और मायूसी के अंधेरे कुएं में गिर चुकी होती। मगर देखो इनके हाथ में कुछ भी नहीं, हालात भी बदतरीन सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं, इसके बावजूद ये पूरी उम्मीद कैसे हैं? एक ही बात नजर आती है और वो अल्लाह ताला पर भरोसा, कामिल यकीन जो इनको चला रहा है। बनू सकीफ से इनको उम्मीद थी कि वो इनकी मदद जरूर करेंगे। वैसे भी वो बड़े दलेर, गैरतमंद, वफादार और मुअज्ज़ज़ लोग मशहूर थे। मेरे नबी को लगता है कि वो लोग जरूर ये दीन कबूल कर लेंगे। दोनों पैदल ही इस पुर मुशक्कत रास्ते पर रवाना हो गए हैं। मैं तो अपने वक्त में बस में वहां जाती थी, तब भी 2-3 घंटे लग जाते थे, और कहां ये पैदल ही चल पड़े। रास्ते में मेरे नबी का मामूल था कि कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, और मैं अब भी देख रही थी इस सफर में भी वो तिलावत कर रहे हैं। ताइफ करीब आ रहा था और जैसे जैसे ताइफ का सरसब्ज इलाका सामने आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या वही होने वाला है जो सब मैंने पढ़ा था? मेरे नबी ने वहां के बड़े सरदारों के घर जाने का इरादा किया। ये सरदार तीनों भाई थे। मेरे नबी ने सोचा उनके पास जाऊं, उनमें से एक की बीवी कुरैश की एक औरत है, खानदानी रिश्तेदारी के सबब कुछ तो हया आ ही जाएगी। सीधे इन सरदारों के घर पहुंचे। रस्मी अलैक सलैक के बाद वो मेरे नबी से आने का मकसद पूछने लगे। मेरे नबी ने एक एक करके मुशरिकीन के जुल्म सितम की दास्तानें बयान करनी शुरू करी। आप फरमाते जा रहे थे और मेरा दिल रोता जा रहा था। मक्का के हालात एक दफा फिर पूरी फिल्म की तरह मेरी नजरों के आगे घूम गए। कमजोरों के साथ क्या हो रहा था, गुलामों के साथ, बेबस मुसलमानों के साथ क्या क्या सलूक इन काफिरों ने नहीं किए। इनको खुदा का खौफ नहीं था। मेरे नबी बताते जा रहे थे मगर मैं देख रही थी इन सरदारों के चेहरों पे कोई एहसास नहीं था, कोई रहम मुझे नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल सपाट चेहरे, इनके दिल पिघलने वाले नहीं थे, यूं लग रहा था ये पत्थर के बने हुए लोग हैं। आखिर में मेरे नबी ने इनसे फरमाया, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। उनको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तरफ दावत दी। अगर वो तो जैसे टस से मस भी नहीं हुए। सब बातें सुन के एक बोला, अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बना के भेजा है तो मैं तो काबा का गिलाफ फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसका ये जवाब सुन के उससे से आग बगोला हो गई। ये खुद को क्या समझता है, इसकी इतनी जुर्रत। मैं अभी उसकी हरकत से, इस हरकत से खुद को संभाल ना पाई थी कि दूसरा बोला, क्या अल्लाह को तेरे सिवा और कोई नहीं मिला था रसूल बनाने को। ये बात सुन के मेरा तो दिमाग घूम गया, और गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात से मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी, मेरे नबी को मेरे सामने कोई ऐसा कहे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। अपनी बेबसी पर मेरी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे, और मैं सिर्फ गुस्से से मुठ्ठियां भींचने लगी। अब तीसरे की बारी थी, उसने भी कुछ कम ना किया और बोला, अल्लाह की कसम मैं तो तेरे से बात भी नहीं करना चाहता। अगर तू अल्लाह का रसूल है जैसा तू कहता है तो फिर तो तेरा मकाम ही इतना बड़ा है कि मैं तुझसे कैसे बात कर सकता हूँ। इसकी आवाज में इस कदर तंज था, फिर वो यहां तक खामोश नहीं हुआ और बोला, और अगर तू झूठा है तो मेरे लायक ही नहीं कि मैं तुझसे बात करूं। मैं हैरान रह गई इनके रवैयों पर, नहीं मानना तो ना मानो मगर ये कौन सा तरीका है कि घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया जाए। आखिर तुम लोग तो बहुत मुअज्ज़ज़ हो, तुम लोग तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हो, पर ये इतना लंबा सफर करके इतनी दूर से आए हुए मेहमान, उनके साथ ये सलूक, ना करो मदद। मेरे नबी को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मगर यूं तहकीर तो ना करो। मैं बोलती जा रही थी, गुस्से से मेरा सर फट रहा था। मेरे नबी कितने दुखी होंगे ये सोच सोच के मेरा सीना फट रहा था। मगर आफरीन है ऐसे नबी पे जिन्होंने जरा भी कुछ चेहरे से जाहिर नहीं किया और खामोशी से खड़े हो गए। मगर इस बार आपके चेहरे पे उम्मीद नहीं थी, यूं लगता था आप इनसे बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ये भी कैसा कर्ब होता है कि इंसान एक उम्मीद के साथ आए और वो उम्मीद भी टूट गई। मेरे नबी वापसी के लिए पलटे और पलटने से पहले सिर्फ इतना फरमाया, अच्छा तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मेरे बारे में किसी को कुछ बताना ना। शायद आपके कहने का मकसद ये हो कि और लोग भी जब ये सुनेंगे कि इन सरदारों ने यूं इनकार कर दिया और दावत को ठुकरा दिया तो वो भी यही करेंगे, और जब कुरैश को पता चल गया तो वो तो और भी खुश होंगे और मजीद दलेर हो जाएंगे आपके खिलाफ। मुझे यूं लग रहा था कि जमीन किस कदर तंग हो गई है मेरे नबी के लिए, ये एक ही तो उम्मीद थी और ये भी कैसे टूट गई, अब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। इन सरदारों में तो जरा भी हया ना थी, इन्होंने जो कुछ किया वो तो किया मगर मेहमान की आखिरी बात का भी पास नहीं रखा, और लगे ठट्ठा करने और हंसने। अभी मेरे नबी वहां से निकले ही थे कि इन्होंने जाकर इस मजलिस की सारी बातें लोगों में फैला दी, और बजाय इसके कि अपने किए पे शर्मिंदा होते, शर्म तो दूर की बात, वो तो फखरिया बयान करने लगे कि कि उन्होंने इनके साथ कैसा सलूक किया। मेरे नबी इस मुलाकात के बाद अपने क़याम की जगह पे चले गए और अगले दिन के लिए प्लानिंग करने लगे कि कैसे दावत देनी है, कहाँ कहाँ जाना है। लगता था कि अभी उनको और लोगों से उम्मीद होगी कि शायद ये सरदार ना माने तो ताइफ के और लोग मान जाए, शायद कहीं और किसी के दिल में बात लग जाए। अगले दिन सुबह ही सुबह मेरे नबी निकले और बाजार का रुख किया। वहां जाके अपनी लाठी पे टेक लगाकर खड़े हो गए और सूरत तारिक की तिलावत फरमाने लगे। आपकी आवाज इस कदर खूबसूरत थी और इस आवाज में आपका वो समा युवत तारिक पढ़ना एक अजीब ही समा बांध रहा था। अल्लाह का कलाम दिल में उतर रहा था। लोग एक दूसरे से चहमगोइयां करने लगे, ये क्या पढ़ रहा है? उनको समझ नहीं आ रही थी। वहां कुरैश के कुछ लोग भी मौजूद थे। ताइफ उनके लिए एक वेकेशन होम की तरह था, सरसब्ज़ शादाब खूबसूरत इलाका। इन लोगों को तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा, हम इसको ज्यादा जानते हैं, अगर जो ये कहता है वो सच होता तो हम खुद ना इसकी बात मान लेते। यानी कुरैश ने यहां पे भी कम ना की और इन लोगों को भी बहकाया। इन लोगों की इस गिरी हुई हरकत से मेरा दिल कट रहा था। मैंने सोचा, हम तो अपने जमाने में किसी की जरा सी उल्टी सीधी बात सुन ले तो दिल छोड़ देते हैं, दोबारा किसी को दावत देने से तौबा कर लेते हैं। मगर प्यारे नबी की हिम्मत को सलाम है कि हर राह चलता फजूल बातें कर रहा है, हर एक जुर्रत कर रहा है, हर एक चाहे वो कुछ भी ना हो मगर वो मेरे नबी के ऊपर बातें लगा रहा है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हम तो अपने जमाने में खुद को इतना बाइज्जत समझते थे कि कोई जरा सी बात कह देता तो आस्तीन चढ़ाकर लड़ने खड़े हो जाते। मगर मेरे नबी का सब्र तहम्मुल देखो, मैं हैरान रह गई, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर मुझे समझ आई, वाकई सूरज की तरफ थूकने वाला अपना ही चेहरा बिगाड़ता है, सूरज को थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ता है। इतना दिल में उतर जाने वाला कलाम सुन के भी कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने लब्बैक कहा हो, कोई एक भी नहीं था जिसने बात को अहमियत दी हो। मेरे नबी अपना पैगाम सुनाकर लौट गए और फिर अगली सुबह का इंतजार करने लगे कि दोबारा जाएंगे और पैगाम देंगे। यहाँ तक आज हमारी किस्त मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ताला कल इससे आगे देखेंगे कि क्या होता है।
तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने।